बाह्य दृश्य चित्रण का शेष अंश, पृष्ठ 91। तरुतालिस तमाल ताल हिंताल मनोहर, मंजुल बंजुल तिकल लकूच कुल नारिकेल वर, एला ललित लवंग संग पोंगी फल सोहे, सारी सूक कुल कलित चित कोकिल अली मोहे। केशवदास जी ने इस बात का कुछ भी विचार न किया कि एला लवंग और पुंगी फल अयोध्या और मिथिला के बीच के जंगलों में होते भी हैं या नहीं। भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्पर मनुष्य की मुद्रा का चित्रण भी रूप प्रत्यक्षीकरण में बहुत प्रयोजनीय है, पर यह हम गोस्वामी जी को छोड़ और किसी में पाते ही नहीं। और कवियों ने केवल अनुभव के रूप में भ्रूभंग आदि का वर्णन किया है, पर लक्ष्य साधने, किसी का मार्ग देखने आदि व्यापारों में जो स्वाभाविक मुद्रा मनुष्य की होती है, उसके चित्रण की ओर उनका ध्यान नहीं गया है। गोस्वामी जी ने ऐसा चित्रण किया है, देखिए, आखेट के समय मृग को लक्ष्य करके बाढ़ खींचते हुए रामचंद्र का कैसा चित्र उन्होंने सामने रखा है। सुभग सरासन सायक जोरे, खेलत राम फिरत मृग गया, बनबसित सो मृदु मूर्ति मन मोरे। जटा मुकुट सिर सारस नयनी, गोहे तकत सुबोहे सकोरे। मारिच के पीछे लक्ष्य साधते हुए राम की छवि देखिए, जटा मुकुट करसर धनु संग मरीच, चतवनी पकती कनखियनु अखियन बीच। एक और चित्र देखिए, सबरी की झोपड़ी की ओर राम आने वाले हैं, वह उनके लिए मीठे मीठे फल इकट्ठे करके कभी भीतर जाती है, कभी बाहर आकर भौं पर हाथ रखे हुए मार्ग की ओर ताकती है। अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डिंब हित सब आनिके, सुंदर स्नेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके। क्षण भवन क्षण बाहर बिलोकती पंथ भू पर पानिके। निशाना साधने में, भौं सिकोड़ना और रास्ता देखने में माथे पर हाथ रखना कैसी स्वाभाविक मुद्राएं हैं। दृश्यों को सामने रखने में गोस्वामी जी ने अत्यंत परिमार्जित रुचि का परिचय दिया है। वे ऐसे दृश्य सामने नहीं लाए हैं जो भद्दे कुरुचिपूर्ण कहे जाएं। उदाहरण के लिए भोजन का दृश्य लीजिए, मानस में दो प्रसंगों में इसके अवसर आए हैं, राम की बाल लीला के प्रसंग में और विवाह के प्रसंग में। दोनों अवसरों पर उन्होंने भोजन के दृश्य का विस्तार नहीं किया है। दशरथ भोजन कर रहे हैं, इतने में धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति भी हसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुद दधि ओदन लपटाई। पृष्ठ 92। भोजन का यह उल्लेख बाल क्रीड़ा और बाल चपलता का चित्रण करने के लिए है। पकवानों के नाम गिनाते हुए भोजन के वर्णन का विस्तार उन्होंने नहीं किया है। इसी प्रकार विवाह के अवसर पर भी भोजन का वर्णन नहीं है। किसी भद्दी रुचि वाले को यह बात खटकी और उन्होंने उनके नाम पर राम केलवा बना डाला। अप्सुर और जायसी को देखिए, वे लड्डू पेड़ा जलेबी पूरी कचौरी बड़ा पकौड़ी मिठाइयों और पकवानों के जितने नाम याद आए हैं या लोगों ने बताए हैं सब रखते चले गए हैं। जायसी तो कई पृष्ठों तक इसी तरह गिनाते गए हैं। लुचई पूरी सुहारी पूरी, इक तो ताती और सुठी कोवरी भुजी समोसा घी मह काढ़े, लौंग मिर्च तेहि भीतर ठाढ़े। इसी प्रकार चावलों और तरकारियों के 2500 नाम देख लीजिए। सूरदास जी ने भी यही किया। नंद बाबा कृष्ण को लेकर खाने बैठे हैं, उनके सामने क्या क्या रखा है देखिए। लुचुई लपसी सद जलेबी सोई जहेवु, जो लगे प्यारी। घेवर मालपुआ मोती लाडू सुघर, सजुरी सरस सावरी। दूध बरा उत्तम दधी, बाटी दाल मसूरी की रुचि न्यारी। आछो दूध औटे छोरी को, मैं ले आई रोहिणी महतारी। इन नामों को सुनकर अधिक से अधिक यही हो सकता है कि श्रोताओं के मुंह में पानी आ जाए। भोजन का ऐसा दृश्य सामने रखना साहित्य के मर्मज्ञ आचार्यों ने भी काव्य श्रेष्ठता के विरुद्ध समझा था। इसी से उन्होंने नाटक में इसका निषेध किया था। दुराद्वानम वधो युद्धम राजदेशा द्विविप्लव, विवाहो भोजनम सपुत्सर्गो मृत्युरतम तथा। कुछ हिंदी कवियों ने बहुत सी वस्तुओं की लंबी सूची देने को ही वर्णन पटुता समझ लिया। इसके द्वारा मनुष्य के भिन्न भिन्न व्यवसाय क्षेत्रों की अपनी जानकारी भी वे प्रकट करना चाहते थे। घोड़ों का प्रसंग आया तो बस, ताजी अरबी अबलख मुस्की गिना चले। हथियारों का प्रसंग आया तो सैकड़ों की फेहरिस्त मौजूद हैं। महाराज रघुराज सिंह ने तो यह समझिए कि वह अपने समय के राजसी ठाट और जुलूस के सामान गिनाने के लिए ही राम स्वयंवर लिखा। इस प्रणाली का सबसे अधिक अनुसरण सूदन ने किया है। उनके सुजान चरित्र को तो हथियारों घोड़ों कपड़ों सामानों की एक पुस्तकाकार नामवली समझिए। गोस्वामी जी को यह हवा बिल्कुल न लगी। इस अनर्गल विधान से दूर रहकर उन्होंने अपने गौरव और गंभीर की पूर्ण रक्षा की। वस्तु प्रत्यक्षीकरण के संबंध में यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह काव्य का साध्य नहीं है। यदि वह साध्य या चरम लक्ष्य होता तो किसी कुर्सी या गाड़ी का सूक्ष्म वर्णन भी काव्य कहला सकता। पर काव्य में तो उन्हीं वस्तुओं का वर्णन प्रयोजनीय है जो विभाव के अंतर्गत होती है अथवा उनसे समबद्ध होती है। पृष्ठ 93। अतः काव्य एक अनुकरण कला है। यूनान के इस पुराने वाक्य को बहुत दूर तक ठीक न समझना चाहिए। कवि और चित्रकार का साध्य एक ही नहीं है। जो चित्रकार का साध्य है वह कवि का साधन है। पर इसमें संदेह नहीं कि यह साधन सबसे आवश्यक और प्रधान है। इसके बिना काव्य का स्वरूप खड़ा ही नहीं हो सकता।